नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। इसे लगभग 11,200 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन भारत के वैश्विक विमानन केंद्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने कल शाम संसद भवन परिसर में पश्चिम एशिया की स्थिति पर सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक के बाद कहा कि पश्चिम एशिया संकट पर सभी दलों के सदस्यों के सभी प्रश्नों और चिंताओं का सरकार ने समाधान किया है।
मैं आपको ये बताते हुए संतुष्ट महसूस कर रहा हूं कि सारे विपक्ष ने जो जो सवाल की और जो जानकारी प्राप्त करना चाहा सरकार ने जवाब दिया, और अंत में सारे विपक्ष के साथियों ने ये कहा है कि संकट के इस घड़ी में सरकार जो फैसला करेंगे, जैसे परिस्थिति है उसके हिसाब से कदम उठाएंगे, तो सब एकजुट होकर के साथ देंगे, ये सब ने कहा है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2031 से 2035 की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय योगदान को मंजूरी देती है, जिससे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा संधि और पेरिस समझौते के तहत देश की महत्वाकांक्षा को बढ़ावा मिला है। भारत ने 2005 के स्तर से 2035 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को 47% तक कम करने का संकल्प लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में बताया कि मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय संपर्क योजना, संशोधित उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के दूसरे चरण की मंजूरी दे दी है।
प्रपोजल एक अप्रूव हुआ है 28,840 करोड़ रुपीस से, वो है मॉडिफाइड उड़ान, एक तरीके से उड़ान 2.0। इसमें 100 न्यू एयरपोर्ट्स को डेवलप किया जाएगा। राज्य सरकारों को ये चैलेंज दिया जाएगा कि आप लोग प्रायोरिटी डिसाइड करो कहाँ पे एयरपोर्ट बनाना है, और लैंड से रिलेटेड, परमिशन से रिलेटेड, कहीं पर भी कोई भी इश्यू आता है वो सब आप प्रायोरिटी बेसिस पे क्लियर करो, उस एयरपोर्ट को लिया जाएगा इस प्रोजेक्ट।
निर्वाचन आयोग ने असम, केरलम, पुदुच्चेरी और चार अन्य राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए नामांकन पत्रों की जाँच पूरी कर ली है। इन राज्यों में 9 अप्रैल को मतदान होगा। आयोग ने कहा कि जाँच के बाद 2,140 उम्मीदवार मैदान में हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मार्कपुरम जिले के रायवरम के पास हुई सड़क दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। दुर्घटना एक लॉरी और निजी बस की टक्कर से हुई। दुर्घटना के समय बस में कुल 35 यात्री सवार थे, जिनमें से 13 की मौत हो गई, जबकि 22 अन्य घायल हो गए। घायलों में से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से सभी घायलों के लिए सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना के कारणों की गहन जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष का सबसे अधिक प्रभाव गरीब और कमजोर लोगों पर पड़ रहा है। उन्होंने तुरंत संघर्ष समाप्त करने का आह्वान किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गुतरश ने कहा कि संघर्ष के परिणाम उन नागरिकों को भुगतने पड़ रहे हैं जिनकी इसमें कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन ही इस संकट का एकमात्र समाधान है। एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गुतरश ने होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही बाधित रहने पर भी चिंता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में स्थान दिया गया है। अमरीकी डेटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए नवीनतम वैश्विक सर्वेक्षण में उन्हें 68% अनुमोदन रेटिंग प्राप्त हुई है। 2 से 8 मार्च के बीच किए गए सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री मोदी अन्य वैश्विक नेताओं से काफी आगे हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 39% अनुमोदन रेटिंग मिली और वे शीर्ष 10 में शामिल नहीं हो सके। देश में आज रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रामनवमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।